लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि हम सब लोग सृष्टि की रक्षा के प्रति समर्पित युवाओं में आनंदित होते हुए सरल और पर्यावरण की दृष्टि से धारणीय जीवन शैली हेतु सही विकल्पों को चुनने का साहस प्राप्त करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदाते एत एसुल्ताते की शुरुआत की है। यह संत पापा फ्रांसिस का तीसरा प्रेरितिक प्रबोधन है जो 9 अप्रैल 2018 को प्रकाशित हुआ था। यह हम सबों के लिए वर्तमान विश्व में पवित्रता हेतु एक निमंत्रण है। अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस हमारा ध्यान इस ओर केंद्रित कराना चाहते हैं कि हम वर्तमान परिवेश में जहां कहीं भी हैं, अपने में पवित्रता को प्राप्त कर सकते हैं। हमने विश्वास की चर्चा करते हुए पिछले प्रसारण में धर्म ग्रंथ बाइबल में चर्चित उन व्यक्तियों के बारे में सुना जो अपने विश्वास के कारण हमारे लिए ईश्वर पर अटूट विश्वास का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। अपने पिछले प्रसारण के अंत में हमने नबी मूसा की चर्चा की जो ईश्वर के द्वारा मृत्यु से बचाकर रखा गया, जिससे वह ईश्वर के मुक्ति विधान में ईश प्रजा का नेतृत्व कर सके। अपने विश्वास के कारण वह राजा फराउन के क्रोध से भयभीत नहीं हुए बल्कि उनके समक्ष जाकर चुनी हुई प्रजा की बातें रखी। श्रोताओं, विश्वास के कारण इसराइलियों ने पास्का मनाया और रक्त छिड़का, जिससे विनाश दूत इसराइलियों के पहलौठे पुत्रों पर हाथ न डाले। विश्वास के कारण उन लोगों ने लाल समुद्र पार किया, मानो वह सूखी भूमि था, और जब मिस्रियों ने वैसा ही करने की चेष्टा की तो वे डूब मरे। विश्वास के कारण यरीखो की चार दीवारी गिर पड़ी जब इसराइली 7 दिनों में 7 बार उसकी परिक्रमा कर चुके थे। विश्वास के कारण रहाब नामक वेश्या अविश्वासियों के साथ नष्ट नहीं हुई क्योंकि उसने गुप्तचरों का स्वागत किया था। गिदियोन, बराक, सामसोन, यिफात, दाऊद, सामुएल और अन्य नबियों की चर्चा करने की मुझे फुर्सत नहीं। उन्होंने अपने विश्वास द्वारा राज्यों को अपने अधीन कर लिया, न्याय का पालन किया, प्रतिज्ञाओं का फल पाया, सिंहों का मुंह बंद कर दिया और प्रज्वलित आग बुझाई। वे तलवार की धार से बच गए और दुर्बल होने पर भी शक्तिशाली बन गए। उन्होंने युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया और विदेशी सेनाओं को भगा दिया। स्त्रियों ने अपने पुनर्जीवित मृतकों को फिर प्राप्त किया। कुछ लोग यंत्रणा सहकर मर गए और वे उससे इसके लिए छुटकारा नहीं चाहते थे कि उन्हें श्रेष्ठतर पुनरुत्थान प्राप्त हो। उफास, कोड़ों, बेड़ियों और बंदी गृह द्वारा कुछ लोगों की परीक्षा ली गई। कुछ लोग पत्थरों से मारे गए, कुछ आरे से चीर दिए गए और कुछ तलवार के घाट उतारे गए। कुछ लोग दरिद्रता, अत्याचार और उत्पीड़न के शिकार बनकर भेड़ों और बकरियों की खाल ओढ़े इधर उधर भटकते रहे। संसार उनके योग्य नहीं था। उन्हें उजाड़ स्थानों, पहाड़ी प्रदेशों, गुफाओं और धरती के गड्ढों की शरण लेनी पड़ी। वे सभी अपने विश्वास के कारण ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। उन्हें प्रतिज्ञा का फल प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ईश्वर ने हमको दृष्टि में रखकर एक श्रेष्ठतर योजना बनाई थी। वह चाहता था कि वे हमारे साथ पूर्णता में पहुंचे। श्रोताओं, इससे भी बढ़कर हम सभी अपने में बड़े साक्ष्यों का अनुभव करने हेतु बुलाए जाते हैं जो हमें निरंतर अपने जीवन के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। ये सारे साक्ष्य हमारे लिए हमारी माताएं, दादियां या प्रियजन हो सकते हैं। उनका जीवन अपने में हमेशा सर्वोत्तम नहीं रहा होगा। यद्यपि अपनी गलतियों और असफलताओं के बीच भी उन्होंने अपने जीवन को आगे की ओर ले चलते हुए ईश्वर को प्रिय साबित हुए। संत गणों को हम ईश्वर की उपस्थिति में पाते हैं और उनके संग प्रेम का संबंध हमें उनकी एकता में बनाए रखता है। प्रकाशना ग्रंथ की पुस्तिका इस बात की पुष्टि करती है। जब वह शहीदों की मध्यस्थता की बात करती है, मैंने वेदी के नीचे उन लोगों की आत्माओं को देखा जो ईश्वर के वचन के विषय में साक्ष्य देने के कारण मर गए थे। वे ऊंचे स्वर में यह कहते हुए पुकारते थे, परम पावन एवं सत्य प्रतिज्ञा स्वामी, आप न्याय करने और पृथ्वी के निवासियों को हमारे रक्त का बदला चुकाने में कब तक देर करेंगे। हम में से प्रत्येक जन कह सकते हैं, ईश्वर के मित्रों से घिरे, मार्गदर्शित किए, मुझे अकेला चलने की जरूरत नहीं। वास्तव में मैं कभी अकेला नहीं रहता हूँ। ईश्वर के सभी संतगण मेरी रक्षा करने के लिए रहते हैं। वे मेरी देख रेख करते और मुझे आगे ले चलते हैं। धर्म घोषणा और संत घोषणा की प्रक्रिया साहसिक गुणों और निशानियों को पहचान प्रदान करती है। अपने जीवन को शहादत स्वरूप बलि अर्पित करना और कुछ निश्चित परिस्थितियों में जहां जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया गया, यहां तक कि मौत की नौबत आने पर भी, यह ख्रिस्त के अनुकरण का एक सर्वोत्तम उदाहरण है जो विश्वासियों के द्वारा यीशु ख्रिस्त के लिए होता है। हम उदाहरण के लिए धन्य मरिया गैब्रिएला संघेदु के जीवन को ले सकते हैं, जिन्होंने ईसाइयों की एकता के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम केवल उनके बारे में नहीं सोच सकते हैं जो धन्य और संत घोषित किए गए हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर भक्तों और विश्वासों के ऊपर प्रचुर मात्रा में अपनी पवित्रता की आशीष बरसाते हैं, क्योंकि यह ईश्वरीय आनंद है जहां वे नर और नारियों को पवित्र करते और उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत रूप में समुदाय से अलग नहीं, बल्कि एक ईश प्रजा के रूप में, जहां वे सच्चे ईश्वर के रूप में उन्हें स्वीकारते और अपनी पवित्रता में उनकी सेवा पूजा करते हैं। मुक्ति विधान के इतिहास में ईश्वर एक चुनी हुई प्रजा को बचाते हैं। हम अपने में कभी भी पूर्ण नहीं हैं, जब तक हम एक समुदाय के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए ना हों। यही कारण है कि कोई भी अपने अकेलेपन में व्यक्तिगत रूप में मुक्ति को प्राप्त नहीं करता है, बल्कि ईश्वर हमें एक मानव समुदाय में मौजूद पारस्परिक संबंधों के जटिल ताने बाने के मध्य अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करने की चाह रखते हैं। वे हमारे इतिहास का अंग होना चाहते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं धैर्य में उपस्थित पवित्रता पर जिक्र करना चाहूंगा जिसे हम ईश्वर के लोगों में पाते हैं। वे माता पिता जो अपने अतुल्य प्रेम में अपने संतानों की परवरिश करते हैं, उन नर नारियों में जो अपने परिवारों की जीविका चलाने हेतु दिन रात मेहनत करते हैं, रोगियों में उन बुजुर्ग धर्म समाजों में जो अपनी मुस्कान को कभी नहीं खोते हैं, उनके धैर्यपूर्ण दिनचर्या में मैं कलीसियाई सैन्य की पवित्रता को देखता हूँ। यह वह पवित्रता है जो बहुधा हमारे पड़ोस में देखने को मिलती है। वे जो हमारे बीच रहते हैं और ईश्वर की उपस्थिति को प्रकट करते हैं, हम उन्हें द्वितीय स्तर की पवित्रता कह सकते हैं। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन गौदाते एत एक्सुल्ताते पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने कार्डिनल माइकल चैडनी द्वारा फ्रतेली तुत्ती में पोप की सामाजिक धर्म शिक्षा पर लिखी किताब की प्रस्तावना लिखी, जिसमें उन्होंने कहा है कि भ्रातृत्व और कलीसिया की सामाजिक शिक्षा ई शास्त्र के बाहर है, किंतु मानवता के लिए ईश्वर के प्रेम में इसकी जड़ें गहरी हैं। संत पापा ने कार्डिनल माइकल चैडनी एवं फादर क्रिस दे बारोन की लिखी किताब भ्रातृत्व समय का चिन्ह की प्रस्तावना में लिखा, सुसमाचार के केंद्र में ईश्वर के राज्य की घोषणा है, जो यीशु इमानुएल और ईश्वर हमारे साथ हैं। वास्तव में उन्हीं में ईश्वर निर्णायक रूप से प्रकट होते, मानव के लिए उनकी प्रेमी योजना पूरी होती, सृष्टि पर उनका प्रभुत्व स्थापित होता तथा ईश्वरीय जीवन का बीज मानव इतिहास में प्रवेश करता है, जो इससे अंदर से बदल देता है। वैटिकन पब्लिशिंग हाउस द्वारा इताली भाषा में प्रकाशित किताब को वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा बृहस्पतिवार को प्रस्तुत किया जाएगा। अपनी प्रस्तावना में संत पापा ने बतलाया है कि भ्रातृत्व का विचार ईश्वर के राज्य पर आधारित है। ईश्वर का राज्य निश्चय ही पहचान योग्य नहीं है या किसी प्रकार की सांसारिक या राजनीतिक अभिव्यक्ति के साथ भ्रमित होने के लिए नहीं है। हालांकि न तो इसे विशुद्ध रूप से आंतरिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक वास्तविकता या केवल बाद के जीवन के लिए एक वादे के रूप में पहचाना जाना चाहिए। संत पापा ने कहा कि ख्रिस्त ईश्वर के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए बुलाए गए हैं। हमें ख्रिस्त विश्वास के सामाजिक आयाम को नहीं भूलना चाहिए। हम प्रत्येक जन दुनिया में ईश्वर के राज्य विस्तार हेतु योगदान दे सकते हैं। उद्धार और मुक्ति के लिए स्थान देकर, आशा के बीज बोकर, सुसमाचारी भ्रातृत्व के द्वारा अहंकार के तर्क को मात देकर और अपने पड़ोसी, विशेष रूप से सबसे गरीब लोगों के प्रति कोमलता और एकजुटता दिखाने के लिए काम करने के द्वारा ईश्वर का राज्य हमारे विश्व में उसी आधार पर प्रकट होगा जिस आधार पर समाज भ्रातृत्व, न्याय और सभी के प्रति सम्मान से भरा हो। इस अर्थ में उन्होंने लिखा कि हमारी मातृभूमि की देखभाल और एकात्मकता पर आधारित समाज का निर्माण, जिसमें हम सभी भाई और बहन होंगे, आस्था के दायरे से बाहर नहीं है बल्कि एक ठोस साक्ष्य है। संत पापा ने आगे लिखा, कलीसिया की सामाजिक शिक्षा सिर्फ ख्रिस्त विश्वास का सामाजिक आयाम नहीं है बल्कि ई शास्त्र मानव के लिए ईश्वर के प्रेम और भ्रातृत्व तथा प्रेम के लिए उनकी योजना में गहराई से रोपा गया है। पोप ने कहा कि कार्डिनल चैडनी एवं फादर बारोन की किताब प्रेरित विश्व पत्र फ्रतेली तुत्ती का परिचय देते हुए द्वितीय वैटिकन महासभा और कलीसिया की सामाजिक शिक्षा के बीच संबंध स्थापित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनका प्रेरित पत्र आधुनिक दुनिया में कलीसिया के प्रेरित संविधान गौडियम एट स्पेस की सांस से आधुनिक दुनिया की चुनौतियों को प्रकाश में लाने की कोशिश है। उन्होंने लिखा कि आज जब हम महासभा के धर्माचार्यों द्वारा बताए गए मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, हम महसूस करते हैं कि हमें न केवल आधुनिक दुनिया में एक कलीसिया और इसके साथ संवाद करने की आवश्यकता है बल्कि सबसे बढ़कर एक ऐसी कलीसिया की जरूरत है जो मानवता की सेवा में है, सृष्टि की देखभाल कर रही है और एक नई सार्वभौमिक भ्रातृत्व की घोषणा कर रही है जिसमें मानवीय रिश्ते स्वार्थ और हिंसा से चंगे होते और आपसी प्रेम, स्वागत एवं एकजुटता पर आधारित होते हैं। और आज के ट्वीट संदेश में संत पापा ने इस बात पर चिंतन करने का आह्वान किया है कि भौतिक संसाधनों का प्रयोग पृथ्वी पर किस तरह हानिकारक हो सकते हैं। उन्होंने संदेश में लिखा है कि संकट के इस समय में स्वास्थ्य, सामाजिक, पर्यावरण पर हम चिंतन करें कि भौतिक संसाधनों का प्रयोग पृथ्वी पर कैसे हानिकारक हो सकते हैं। आइए हम सृष्टि के संबंध में अधिक सरल और सम्मानपूर्ण तरीके से बदलाव लाने और आगे बढ़ने का चुनाव करें। अपने दूसरे ट्वीट संदेश में संत पापा ने ख्रिस्तीय आध्यात्मिकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखा, ख्रिस्तीय आध्यात्मिकता संयम और सरलता का प्रस्ताव रखता है जो हमें रुकने और छोटी चीजों की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन प्रदत्त अवसरों के प्रति कृतज्ञ होना, हमारे पास जो है उसे आध्यात्मिक रूप से अनासक्त होना और हमारे पास जो नहीं है उसके लिए उदासी के वश में नहीं होना। कनाडा के धर्माध्यक्ष आशा के मार्ग पर इस भूमि के आदिवासी लोगों के साथ चलने की अपनी प्रतिबद्धता की एक मूर्त अभिव्यक्ति के रूप में आवासीय स्कूल के पीड़ित लोगों, उनके परिवारों एवं समुदायों के लिए उपचार और मेल मिलाप की पहल का समर्थन करने हेतु एक राष्ट्रव्यापी सामूहिक वित्तीय प्रतिबद्धता व्यक्त कर रहे हैं। 5 वर्षों में $3 करोड़ के लक्ष्य के साथ देश के हर क्षेत्र में पहल की जाएगी। प्रतिबद्धता स्थानीय स्तर पर हासिल की जाएगी। पूरे कनाडा में पल्लियों के साथ पहल में भाग लेने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। कनाडा के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष रेमंड पोयसन ने आशा व्यक्त की है कि यह प्रयास पूरे कनाडा में एक अर्थपूर्ण परियोजना को समर्थन प्रदान करेगा तथा आवासीय स्कूल प्रणाली के कारण होने वाले ऐतिहासिक एवं वर्तमान के आघात का सामना करने में महत्वपूर्ण अंतर लाएगा। जब कनाडा के धर्माध्यक्ष पिछले सप्ताह एक सभा में एक साथ आए तो इस बात पर सार्वभौमिक सहमति थी कि कार्तिक संस्थाओं को कनाडा के आवासीय विद्यालयों में अनुभव की गई पीड़ा को दूर करने हेतु ठोस तरीके से अधिक काम करने की आवश्यकता है। धर्म प्रांतों के पहलों के साथ मिलकर यह प्रयास आवासीय स्कूल के बच्चे लोगों और उनके समुदायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कार्यक्रमों और पहलों में मदद करेगा एवं उपचार के मार्ग में सहायता के लिए आवश्यक संसाधनों को सुनिश्चित करेगा। कनाडा के कार्तिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष विलियम ने स्थानीय लक्ष्य समय और फंड के वितरण पर आदिवासी लोगों से मिलकर काम करने के महत्व पर प्रकाश डाला। कनाडा के धर्माध्यक्ष उस सिद्धांत से प्रेरित हैं कि हम तब तक आदिवासी लोगों के बारे नहीं बोलेंगे जब तक कि उनसे बात नहीं कर लेते। इसके लिए स्थानीय नेतृत्व के साथ चल रही बातचीत उन कार्यक्रमों को समझने में सहायक होगी जो समर्थन के सबसे योग्य है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं है जो आवासीय स्कूल के लोगों द्वारा महसूस किए गए दर्द को खत्म कर सकता है, लेकिन जहां हम सुनने, रिश्तों की तलाश करने और सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए सक्षम हैं, हम आशा की एक नई राह पर एक साथ चलना सीखने की उम्मीद करते हैं। दुनिया में बहुत अधिक गरीबी के साथ सेंट विंसेंट डी पॉल और अन्य संतों ने ख्रिस्त का साक्ष्य गरीबों के मित्र के रूप में दिया है, जो ख्रिस्तियों को स्मरण दिलाता है कि बदलाव लाना संभव है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।